నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్ నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఆ శ్రీమద్భాగవతం షష్టమ స్కంద్ అధ్యాయ కా నామ్ 18వ అధ్యాయ అధ్యాయ కా నామ్ రాజా ఇంద్ర కా వధ కర్నే కే లియే దితి కా వ్రత్ శ్లోక సంఖ్య 50 కే బారే మే చర్చా కరేంగే 49 తీన్ కరేంగే నోచిష్టా తృష్టా సలిలా సంధ్యాయాం ముక్తర్ధజా అనర్చిత సంయత అవాక్ నాసంవీత బహిశ్చరేత్ నోచిష్టస్పృష్ట సలిలా సంధ్యాయా ముక్తర్ధజా అనర్చిత సంయత అవాక్ నా సంవీత బహిశ్చరే నోచిష్టా స్పృష్ట సలిలా సంధ్యాయా ముక్తర్ధజా అనర్చిత సంయత వాక్ నా సంవీత బహిశ్చరే నోచిష్టా స్పృష్ట సలిలా సంధ్యాయా ముక్తర్ధజా అనర్చిత సంయత వాక్ నా సంవీత బహిశ్చరే నోచిష్టా సృష్ట సలిలా నోచిష్టా సృష్ట సలిలా సంధ్యాయా ముక్త ప్రింట్ గలత మా నీ హై సోచా జమ్ నీ రా మాతాజీ నా నహి ఉచ్చిష్ట జూఠా అస్పృష్ట సలిలా వినా ధోయే సంధ్యాయాం సాయంకాల్ ముక్తమూర్ధజా బాల్ ఖోలే హుయే అనర్చిత ఆభూషణ రహిత అసంయత్ వాక్ వాణికే సంయమ బినా నా నహి అసంవీత బినా ఓఢే బహి బాహర్ చరేత్ జావే అనువాద తథా తాత్పర్య శిలప్రపాద్ ద్వారా శిలప్రపాద్ కి తుమే ముహ్ హాత్ తథా పాంవ్ ధోయే బినా బాహర్ సడక్ పర్ నహి జానా చాహియే తుమే నా తో శ్యామ్ కో బాల్ ఖోలే హుయే ఔర్ నా ఆభూషణో సే సజ్జిత్ హుయే బినా బాహర్ జానా చాహియే జబ్ తక్ వాణీ కా సంయమ నా హో ఔర్ శరీర్ ఠీక్ సే ఢకా నా హో తబ్ తక్ తుమే ఘర్ సే బాహర్ నహి జానా చాహియే తాత్పర్య कश्यप मुनि ने अपने पत्नी को सलाह दी कि जब तक ठीक से अलंकृत और वस्त्राभूषित ना होवे बाहर ना निकले। उन्होंने आजकल चारों ओर प्रचलित मिनी स्कर्ट पहनकर बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। प्राच्य सभ्यता के अनुसार जब कोई स्त्री बाहर निकलती है तो वो अपने शरीर को ठीक से ढके रहती है जिससे कोई उसे पहचान ना सके। शुद्धि के लिए इन सब विधियों को स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण भक्ति करता है तो वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और इस संसार के कलमश से बचा रहता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया यचोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगना रघुनाथानुतं तं सजीवं आद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारण सोयशाय गर्भोदशाय तपयुब्धशाय शेषस्य यस्यांश स नित्यानन्दाख्य राम शरणं ममस्तु। ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त भक्तगणों को हरे कृष्णा। आज का रविवार सत्संग में सभी को स्वागत अभिनंदन। श्री राधा रासवी हर श्री राम लक्ष्मण गौ निताय का आशीर्वाद सभी को लभ्य हो। ये प्रसंग तबारा आज का जब भगवान नृसिंहदेव भगवान वराहदेव हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप को वध करने के पश्चात जो है माता दीति अत्यंत दुखी हुई। जब भी हमारा पुत्र होते हैं विष्णु जो है कोई ना कोई उपाय करके हमें वध करते हैं। दीति अदिति दोनों बहनें सगी बहनें दोनों ही, फिर भी ईर्ष्या जो स्त्री का स्वाभाविक है वो गलत नहीं स्वाभाविक है। वो ईर्ष्या के कारण जैसा ईर्ष्या के कारण जो है माता का जिस भाव रहता उसी भाव से पुत्र कभी पुत्री पुत्री हो उसी भाव में होते हैं। हमेशा दीति अपना बहन से देश का कारण उनके जितने पुत्र जो है राज दैत्य है पूरा ही देश भाव से रहा। अदिति का पुत्र जो देवता है और उसके लिए उसने सोचा कि इंद्र को कैसा भी मैं मारना है ऐसा पुत्र को मैं जन्म लेना है जिससे वो पुत्र मेरे इंद्र को मारे। उसके लिए षड्यंत्र रचाई। अपना पति कश्यप महर्षि तो ऐसे इस प्रकार उसने संतुष्ट किया, सेवा भी किया, अपना रूप सौंदर्य से प्रलोभन भी दिया। सेवा से संतुष्ट हुआ तब उसने कश्यप महर्षि बड़ा प्रसन्न हुआ, उसका रूप लावण्य और उसे आकर्षित भी हुआ। बगैर सोचे वरदान दिया, देखिए चाहो जो कुछ मांगो मैं वरदान देता हूं, तुम मेरे को पति को परमेश्वर जैसा शास्त्र कहता है कि उसी ढंग से मुझे सेवा किया है, इसलिए तुम वर लेने का अधिकार अधिकृत है, इसलिए जो वर चाहे मांगो मैं देगा। उस समय दिति मांगती है, हे नाथ यदि आप हमारे से प्रसन्न हैं, हमारे को ऐसा एक पुत्र प्रदान करो जो इंद्र को मारे, इंद्र को वध कर सके। जब ये कश्यप सुना बड़ा अपने आप को धिक्कार कर लेते हैं, मैं कैसा आदमी हूं, एक स्त्री का मोह का प्रलोभन में आकर मैं बगैर सोचे उसको वचन दे दिया, और वचन दिया तो उसको निभाना ही पड़ेगा। परंतु उसने सोचा कि वचन तो मैं निभाऊंगा, परंतु वो पुत्र जो है इंद्र को नहीं मारे, उसके लिए उपाय करना है। कैसे करना है, इनको अपना पत्नी दिति को बताते हैं, एक देवी यदि तुम एक साल तक एक व्रत का पालन करोगे, उसके पश्चात तुम्हारा जो पुत्र होगा तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो जाएगा। परंतु याद रखना, यदि तुम उसमें भंग हो गया फिर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, उसमें व्रत का पूर्ण नियम से पालन करना एक वर्ष तक। अब व्रत कैसा करना है ये बता रहे हैं, कल जैसे बताया था, कल का चर्चा चला था कि समय ना तो उग्र बने, ना ही किसी से किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी को शाप ना दे, असत्य भाषण करे, ना तो अपने नाखून तथा बाल काटे, ना हड्डियां तथा खोपड़ी जैसा अशुद्ध वस्तुओं को स्पर्श ना करें। आज का तीन श्लोक में है, ना स्नायन न कुप्येता ना संभाषेत दुर्जन ना वसीताधवासम च विध्रुताम क्वचित। कश्यप ने कहा, हे कल्याणी नहाते समय पानी में कभी ना घुसे, कभी क्रोध ना करे, और ना दुष्ट लोगों से कभी बोले या साथ करे, कभी भी बिना धुले वस्त्र ना पहने, और पहले धारण की गई माला को कभी ना पहने। नोचिष्टम चांडिकानम च सामिशम वृषलावृतम भुंजितो दक्त्यया दृष्टम पिबेनांजलिना तपः। नोचिष्ट उच्चिष्ट नहीं करना, जो दुर्गा को भोग अर्पण करते हैं, उसको प्रसाद रूप सबको वितरण करते हैं, उसको नहीं लेना, उसको नहीं खाना। चंडिकानम च सामिशम वृषलावृतम, यदि कोई आपको भोज्य पदार्थ कोई शूद्र द्वारा लाया गया उसको नहीं लेना। शूद्र का अर्थ एक जन्म से नहीं लेना, गुण से लेना है। भुंजी तो क्या दृष्टम विभिन्नांजलिना, यदि कोई स्त्री रजस वाला है, आप भोजन के प्रसाद ले ग्रहण कर रहे हैं, परंतु कोई रजस वाला स्त्री उसको और देखा है तो उसको आप नहीं खाना। साथ साथ जब आप पानी पीते हैं दोनों अंजलि भर कैसे नहीं पीना चाहिए, ये वर्जित है। गांव में भी पानी कैसे पीते हैं, एक आस्तव करते हैं, ऐसा नहीं पीता, ऐसा कई आदमी पीते भी है, गलत है। नियम के अनुसार एक आस्तव करेंगे ऐसा पीना है। तो ये सब बता देते हैं, और आज का श्लोक में बोला है कि तुम्हें मुंह हाथ धोए बिना बाहर सड़क पर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें ना तो शाम को बाल खोले हुए और ना आभूषणों से सज्जित हुए बिना बाहर जाना चाहिए। जब तक वाणी का समय ना हो और शरीर ठीक से ढका ना हो तब तक तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सभी ये कोई विशेष नहीं है, मतलब प्रपाद व्याख्या में लिखते हैं कि ये तो कृष्ण कॉन्शियस एक वैष्णव का आचार है। वस्तुतः नारद महर्षि सातवां स्कंद में 11वां अध्याय में 8 से लेकर 12 श्लोक में 12 श्लोक तक 7 5 श्लोक में एक मनुष्यों का गुण क्या है उसमें श्रीला प्रपाद उस अध्याय को, उस पांच श्लोक के अध्याय को बता देते हैं, क्वालिफिकेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो अपना जो मनुष्य सोचते हैं उनका क्या गुण होने चाहिए, 30 गुण बता देते हैं। वो 30 गुण वैष्णवों का है, अर्थ है कि जब जैसे कि कोई भी मनुष्य योनि में जन्म लेता है उनको कम से कम वैष्णव गुण होना अनिवार्य है। उसमें ऐसे जैसे कि सच्चा भाषण करना, छल नहीं करना किसी से, हर एक ऊपर दया करना, तपस्या, दिन में 2 दफा नहाना, ये वैष्णव का ही है। और जैसे क्षमा, टॉलरेंस होना चाहिए, टॉलरेंस का सहनशीलता होना चाहिए, ये भी वैष्णव का गुण है। अच्छा और बुरा में फर्क करने का बुद्धि होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन, दान देना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, संत महापुरुषों का सेवा करना चाहिए, ये सभी वैष्णव का गुण है। चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णव का 26 गुण बताया, और भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में 12वां अध्याय में 13 से लेकर 19 श्लोक में भक्तों का जो गुण है उनको पसंद आता सभी, और ये गुण बराबर ही है। इसमें बोलते किसी से द्रोह ना करना चाहिए, द्रोह भावना नहीं होना चाहिए, भगवान भी यही बोलते अद्रोह। भगवान बोलते भक्तों का सबसे प्रथम गुण होना चाहिए किसी को द्वेष नहीं करना, अध्यष्टा सर्वभूतानां मैत्र करणीय वचा निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। सबसे प्रथम गुण भक्तों को होना चाहिए, जो अपना आप को भक्त सोचते हैं कि मैं भगवान को सेवा कर रहा हूं, सेवा कर रहे हो अच्छी बात है, परंतु आपके अंदर ये गुण है, भगवान बोलते ये गुण है और मैं और सेवा कर रहे हैं, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो हमारा जीवन का लक्ष्य भगवत वैष्णव का जीवन का लक्ष्य एक ही है, किसी प्रकार से के ना उपाय हो भगवान श्री कृष्ण को राधा रास विहार को संतुष्ट करना ही हमारा उद्देश्य जीवन का लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए प्राप्त के लिए पूरा हम ये गुण को लेना चाहिए। यहां पर श्रील प्रपाद भी लिखते हैं व्याख्या में कि 47 का व्याख्या में लिखते हैं कि श्रील कश्यप महर्षि अपना पत्नी को कृष्ण भावना भावित बना रही है, अर्थ है कि ये गुण जितने भी है वैष्णव गुण है। अब यहां पर बोले हैं कि स्त्री के लिए, कभी कई पाश्चात्य देश में, मैं अफ्रीका में रहता हूं, जब आप स्त्री के बारे में कई जगह भागवत में चर्चा था तो सभी लेडीज बोलेंगे, इधर बोलेंगे हमेशा वाई दे टॉक अबाउट द लेडीज ओनली, हमेशा स्त्री के बारे में शास्त्र में क्यों लिखा रहता है। ये बड़ा आजकल ज्यादा पढ़ा लिखे माताएं भी भारत में भी इस प्रकार का चिंतन करते हैं, शास्त्र का भी गलत नहीं बोलता। यदि आपको घर में कोई वज्र दे दिया, मणि दिया, क्या ड्राइंग रूम में से जहां सिटिंग टेबल में रखकर जाओगे? आपको मणि दे दिया, आप जहां बैठे हैं चलो इधर पर ऐसे रख देते, कहां जाएगा, ऐसे रखोगे, कहां रखते हो? ट्रेजरी में लाख, और चाबी भी 2-3 चाबी लगाओगे, ऐसा ना कोई ना ले। स्त्री भी एक मणि समान है, जब तक स्त्री अपना धर्म का रक्षा करेगी तब तक जो है समाज में धर्म रहेगा। आज जो है भारत के इतिहास पढ़ो, 700-900 वर्ष तक जो हमारा सनातन धर्म का ताड़ना हुआ, ये माताओं के बलिदान के कारण जो अभी तक सनातन धर्म बचा रहा। जैसे कि राजस्थान में आप देखे हैं माता जोहार करते थे, क्योंकि अपना आपको धर्म की रक्षा कर ली है, अपना आपको रक्षा करना धर्म की रक्षा हेतु अपना को बलिदान देते रहे, क्योंकि वो जब तक वो धर्म का पालन नहीं करेंगे समाज में धर्म नहीं रहेगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया था कि माताओं को केश काटना नहीं है, एक पहल था। आप तो देखा होगा रामायण में एक प्रसंग आता है, जब योगा देवी भगवान श्री विष्णु के लिए तपस्या कर रही थी, रावण वहां से चलता जाते जाते योगा देवी देखते हैं कि हे सुंदरी तुम वो अत्यंत सुंदर है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अभी तो वो समाधि में है, बोलती नहीं है। रावण क्रोध आकर अपना उनका केश को अग्रभाग को थोड़ा स्पर्श करता, कट कर देता है। जैसे स्पर्श कर दिया उनका समाधि भंग हुआ। उनका बड़ा क्रोध से बोलती है, हे दुष्ट, तुम वैदिक धर्मों का उल्लंघन किया है। किसी भी अवस्था में स्त्री का स्पर्श, केशों को स्पर्श करने का अधिकार किसी को नहीं है, और तुम उस उल्लंघन किया, तुम्हारा मृत्यु का कारण बनूंगा। शाप दिया वही सीता बनकर उसका मृत्यु का कारण बन गया। कहने का तात्पर्य है कि स्त्री का केश बड़ा संवार कर रखना है, लेकिन आजकल तो फैशन बन चुका है। पहले को स्पर्श करने और हमेशा स्त्री केश को ढकते रहना है। अब देखा होगा, 30 साल पहले जाइए, 1990 ये मल्टी चैनल राक्षस टीवी जब से आया नहीं है, उससे पहले 1990 से पहले आप देख लीजिए अपना अपने सभ्यता कैसा था। ये एक आंख राक्षस है टीवी, सभी दो आंख होता है लेकिन एक आंख है। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म को 900 साल में नष्ट नहीं कर पाया, ये 30 साल में 1990 से कितना हुआ, 25 साल में टीवी कल्चर पूरा भ्रष्ट कर दिया सनातन धर्म के कल्चर को। सभी के लिए, केवल स्त्री के लिए, पुरुष के लिए भी पतन हो गए। एक समय था शिक्षा के बिना अपना आप को बड़ा लज्जा समझते थे। शिक्षा नहीं है, अरे हिंदू है शिक्षा नहीं है, परंतु आज तो शिक्षा रखने की शर्माते सभी है। केवल माता नहीं, प्रभु लोग भी धर्म का पालन नहीं करते। जब तक हम धर्म का पालन नहीं करते हैं, मन में असंतुष्ट नहीं आएगा। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं सातवें स्कंद में, बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, धर्मो मूलम ये न आत्म प्रसिद्धति। हे नारद महर्षि, जब तक मनुष्य अपना धर्म को अवलंबन नहीं करेंगे, तब तक उनका आत्मा का संतुष्टि हो ही नहीं पाता। धर्मों का नियम का पालन करना अनिवार्य है यदि अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहता है। ये प्रभु के लिए और माता सभी के लिए लागू है। यहां पर प्रसंग में माताओं को ऊपर आ रहा, इसलिए अब देखा होगा, अब आजकल तो सभी केश खोलकर चलने की फैशन बन चुका है। पहले केश खोलकर कोई बाहर जाता है तो इसको बड़ा अपमान समझते। समाज में स्त्री का केश एक ही समय खुल सकता है जब पति का देहांत होता है, अन्यथा जब स्नान करती है, पति को सुखाने के लिए घर में रहती है, आंचल से ढक कर रहता है। किसी भी अवस्था में पर पुरुष देख नहीं सकता उनका केश को बड़ा। लेकिन आज तो कलयुग प्रभाव ऐसा बढ़ते जा रहा, सिनेमा प्रभाव, टीवी प्रभाव है कि सब हम भूलते जा रहे हैं कि धर्म को। भागवतम पढ़ने का अर्थ है कि उसको हम अपने जीवन में कैसा अमल करें। केवल कथा का स्वर पर सुने, एक कान से दहना कान से सुने बायां से चले, कोई लाभ नहीं है। इसको सुनकर हम जीवन में अमल करना चाहिए, अन्यथा कोई नहीं। हर एक चीज को जो भी हम भागवत में, ताकि हम भागवत पढ़ते पढ़ते भागवत बनना है। जीवन का लक्ष्य जो हरिभक्त करते हैं भागवत है। हरिभक्त बनना साधारण नहीं है, और बड़ा भाग्य से भगवान का भक्ति में आने के लिए हमारा अवसर मिलता है। भाग्योदय न बहु जन्म समर्जित है ना, सत्संगम चलभते, कई जन्मों का संचित पुण्य कार्य में भाग्योदय होता, तब जाकर ऐसा सत्संग में आने के लिए अवसर मिलता है। यह साधारण विषय नहीं कि आप सभी आज सत्संग में इधर बैठे हैं, नहीं, साधारण विषय नहीं है। मंदिर में आना ही एक महाविशेष है। जो आदमी का भाग्य खुल जाता है वो भगवान का दर्शन के लिए श्री हरि मंदिर में आ पाता है। जैसे श्री हरि मंदिर में आ गया, भगवान का दर्शन कर लिया, कई जन्मों का पाप नष्ट हो जाता उनका, बगैर कुछ के ये मुफ्त में नष्ट हो जाता। और जब भक्तों का सांगत्य में बैठा, अब उसके तो और विशेष है, भगवान का सन्निधि में भक्तों का सांगत्य में बैठना बड़ा भाग्य है। इसलिए नारद महर्षि बोलते हैं, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जित है ना, सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वय, अज्ञाना हेतु कृतमोह मदांधकार। क्योंकि केवल आप सत्संग में बैठे, इसलिए अज्ञान के कारण कई जन्मों से कई बार बार हम ऐसा विकर्म करते हैं, वो सब इसे नष्ट हो जाएगा। नाशाय भेदो ततो उदये विवेकः। ये सत्संग से लाभ होता है। और सत्संग में आ गया तो हम भगवान का वाणी सुनते हैं, भगवान का वाणी सुनकर हम अपने जीवन में कैसा अमल में लाएं, अन्यथा वो कथा ही रहेगा। यहां पर कश्यप महर्षि माता तिथि को बता रहे हैं एक गुण किस प्रकार होने चाहिए माताओं का, ऐसे प्रभुओं का गुण भी ऐसे नहीं कि नहीं सोचना केवल माताओं के लिए। तीसरा अध्याय में एक पति किस प्रकार रहना चाहिए, तीसरा स्कंध में कपिल महर्षि बोलते हैं, मायापुर में एक ने पूछा था, बोलते हैं क्या बात है हमेशा हस्बैंड के बारे में बोलते हैं हा? तो भक्ति विजय पूर्ण महाराज बोले क्योंकि भागवत इसलिए बोले तुम पति का योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हारे बार बार बोलना पड़ता है एक पति का धर्म कैसे निभाना चाहिए। ये नहीं कि भागवतम या शास्त्र केवल माताओं के लिए बोलता है, इस बात नहीं है, दोनों के लिए बोलता है, दोनों धर्म निभाना है। तो यहां पर प्रसंग है माताओं के लिए है इसलिए। और बोलते हैं कि नाप्स स्नायन्ना, जब स्नान करते हुए जब नदी में स्नान करते हैं, नदी में जाकर स्नान करना चाहिए, स्नान करते करते नदी में प्रवेश करना वर्जित है। दोनों में अंतर है कि नहीं, स्नान करते करते नदी में प्रवेश करना या नदी में जाकर स्नान करना, क्यों कई कारण है, सामाजिक कारण है इसका। पहले नदी में प्रवेश कीजिए, यदि गंगा जी में स्नान कर रहे हैं ऐसा पवित्र नदियों में जाते हैं तो स्नान करते हैं, पहले नदी में प्रवेश करो उसके पास पश्चात कर स्नान करना चाहिए। पहले गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए, भूदेवी को, वरुण देवी को, सूर्य देव को प्रणाम करके फिर स्नान करना चाहिए, वो नियम अलग है। परंतु स्नान करना क्या है, यहां पर बता रहे हैं कि स्नान करते हुए नदी में प्रवेश ना करें परंतु नदी में प्रवेश करके स्नान करें। कभी क्रोध ना करे, आप व्रत का धारण कर रहे हो, और ऐसे भी वैष्णव के लिए भारी भक्त के लिए क्रोध नहीं उचित नहीं है। क्रोध क्यों आता है हमको, चाहे आप हो मैं हो, हम लोग क्रोध क्यों आता है, क्रोध का कारण क्या है हा? काम है अर्थात इच्छाएं, और इच्छा क्यों आता है, अहंकार के कारण। ए मैं तो वरिष्ठ भक्त हूं, मैं जो बोला वो सुनना है, क्यों नहीं सुनता, एक अहंकार आ गया ना। और दूसरा कई इच्छा होता, और इच्छा का आपूर्ति में ही क्रोध आएगा। इच्छा बहुत रहता है हरे की, जो हमारी इच्छा हरे की इच्छा पूरा होना है तो कोई ऐसा नहीं है, ये कभी ये नहीं होता कि मैं जो चाहता वही हो जाए, ऐसा नहीं है। परंतु पूर्ति नहीं होगा हमारे को क्रोध आएगा, और जहां से क्रोध होने से हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा विभ्रमा। इसलिए जो भक्ति मार्ग में रहते हैं क्रोध नहीं आना चाहिए। माता पूरा ग्रस्त को घर को चलाना, इसलिए उसको क्रोध शोभा नहीं देता, बड़ा शांति से गुरु को चलाना है। तो इसलिए क्रोध नहीं कर, भक्ति मार्ग में जब रहते हैं क्रोध तो शोभा नहीं देता। क्रोध का अर्थ है अहंकार है, बहुत इच्छा है, जब इच्छा रहेगा तो आपको शांति कहां मिलेगा, क्रोध ही रहेगा, इसलिए क्रोध नहीं होना चाहिए। ये सभी क्यों बता रहे हैं उनको, वैष्णव गुण क्यों बता रहे हैं, उनकी इच्छा था क्या कि उनका जो पुत्र होने वाला है इंद्र को मारना है। अब जब तक माता के अंदर द्वेष भाव नहीं हो, और पुत्र में कैसे द्वेष भाव आएगा, यदि उसका हमेशा क्रोध रहेगा द्वेष बुद्धि रहेगा, उसका जो पुत्र पैदा हो जाएगा वो भी उसी प्रकार का, माता का जो भी भावना है उसी भावना के साथ चेतना रहा तो उसी चेतना के साथ पुत्र भी जन्म हो जाएगा। एक जब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए माता जब गर्भस्थ रहते हैं गर्भिणी रहते उस समय टीवी ना देखे, केवल दसवां स्कंद को पढ़े। यदि अपना बच्चों को भक्त बनना चाहते, सच भक्त नहीं बना सच चरित्र बनना चाहता है, एक सिविलाइज आदमी बनाना चाहता है, टीवी कभी ना देखे। टीवी का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि हमारा माइंड में रहेगा, गर्भस्थ शिशु को भी उसको प्रभाव करेगा मानसिक रूप से। परंतु दसवां स्कंद को पढ़े या कृष्ण किताब को पढ़ लीजिए, क्योंकि भगवान का लीलामय कथाओं को सुनेंगे भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, पुत्र भी उसी प्रकार का भगवान का वैष्णव गुणों समेत पैदा हो जाएगा। इसलिए बता रहे हैं कि ये वैष्णव गुण बताने से द्वितीय में द्वेष भाव आएगा नहीं, क्रोध नहीं रहेगा, भगवान के चिंतन में रहेगा। तो जो बच्चा पैदा होने वाला भी है, माता का जो मानसिक चिंतन है उसी के अनुसार बच्चा पैदा हो जाएगा। जब इसमें क्रोध नहीं ना द्वेष भाव है, जो बच्चा होने वाला है उसमें क्रोध और द्वेष भाव कैसे आ सकता है? इसलिए कश्यप महर्षि बड़ा सोच विचार उपाय करके वरदान तो दे दिया, लेकिन वो नहीं चाहता कि इंद्र को मारे। उसको उपाय करके बोला, ये सब वैष्णव गुण को तुम अवलंबन करो। अरे अवलंबन करके तुम करोगे तब तो तुम्हारा इच्छा पूरा होगा, लेकिन संभव नहीं है। कोई दुष्ट लोगों से बोलना नहीं चाहिए, माताओं के लिए किसी दुष्ट से बात करने का कोई आवश्यकता नहीं है। दुष्ट दुष्ट ही होता है, दुष्ट कभी मित्र नहीं हो सकता। कभी बिना धुले वस्त्र ना पहने, कोई भी वस्त्र पहनते हैं साफ वस्त्र पहने, ये साधारण गांव वाले भी पहनते हैं। हम लोगों क्या आजकल फैशन बना है, सुबह हम लोग ऑफिस आ जाएंगे हैंगर में रखेंगे, फिर कल पहन कर जाएंगे। अरे क्या खराब नहीं हुआ? अरे खराब कहां होना, टेरेलिन टेरकॉट का जमाना है, तो एक महीने भी स्त्री जैसा कि ऐसा कैसा रहेगा, लटका रहो, अशुद्धि है। भगवत में लिखा है झूठा नहीं खाना। वैष्णव सदाचार के अनुसार एक गुरु का उच्चिष्ट खा सकते, उसके अलावा और किसी को उच्चिष्ट खाना वर्जित है। और साधारण तौर पर गरुड़ पुराण में भी लिखा है, उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ जो उच्चिष्ट खाता है। महाराज जो है सबको बताते हुए किस किस आदमी यमलोक में लेकर आना उसके बारे में बोलता रहता है, उच्चिष्ट खाना निषेध है सनातन धर्म के अंदर। इसलिए कश्यप महर्षि उनको बता रहे हैं उच्चिष्ट नहीं खाना, नाचोष्टिनम चांडिकानम, जो दुर्गा को जो भोग अर्पण किया उसको प्रसाद रूप में कभी ग्रहण नहीं करना, क्योंकि जो भी दुर्गा को आप अर्पण करते हैं मांस मदिरा ऐसी रहता, भोज्य पदार्थ नहीं है, आमिष भोजन होता है। और दूसरा, और जो अर्पण करते वो तो पूरा इच्छाओं के साथ, दुर्गा को जब अर्पण करेंगे क्या बोलेंगे, माँ मुझे अब वरदान, ये लिस्ट मांग बना देते पहले ही। एक दिन पूजा क्या करेंगे 10-15 लिस्ट बनते जाता है, तो ऐसी इच्छाओं के साथ नहीं है। जैसा वैष्णव हरे भक्त हरे कृष्ण भक्त कैसे करते हैं, भगवान का अर्पण करेंगे तो क्या कोई भाव रहता है? केवल राधा रास विहार का संतृप्ति के लिए हमारा कोई इच्छा नहीं रहता, हमारा इच्छा है केवल भगवान का संतुष्टि होना चाहिए, उसमें कोई इच्छा नहीं है। ऐसी भोजन हमारा प्रगति के लिए सहायक बनता, परंतु ऐसा काली देवी और अन्य देवताओं को जब अर्पण करेंगे वो भोज्य का योग्य नहीं है, इसलिए मना कर रहे हैं। चंडिकानंत सामिषम वृषलाहृतम, जो शूद्र द्वारा बना, शूद्र का अर्थ है जन्म से नहीं लेना चाहिए, जो अशुद्ध जो वैदिक धर्मों को पालन नहीं करते हैं। जैसे कि हरिभक्ति में जब अभक्तों से कुछ भी लाते हैं तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, भोज्य पदार्थ किसी भी अवस्था में। बोलेंगे अरे मेरे मित्र है मेरे से बात करना बंद करेगा, कोई बात नहीं है, मेरा मित्र बात करने से बंद करने से यमराज से कोई हमारा का आपत्ति नहीं, लेकिन मित्र है बोल के मैं खा ले यमराज से आपत्ति आ जाएगा। जब अंतकाल में रहूंगा मेरा मित्र मेरा माता पिता मेरे साथ कोई नहीं आएगा, तब यमराज और मैं अकेला आप हमने सामने रहेंगे। ऐसा तो भगवान के भक्तों के लिए यमराज दूर ही रहते हैं, फिर भी सावधान रहना चाहिए। हम ये नहीं चाहिए मैं तो हरिभक्त हूं यमराज दूर से रहेगा, मैं जो चाहे वो करूं, तब बोले बेटे तुम मेरा गेस्ट है, भी जो मन चाहे करते हैं, भगवान का आज्ञा के अनुसार जब करते हैं हम भक्त है, भगवान का आज्ञा के अनुसार नहीं करेंगे आप जब करो अवश्य कर रहे हैं, परंतु उल्लंघन किया इसलिए यमराज का भक्त गेस्ट बन सकते हैं। और जब तक गुरु का आज्ञा के अनुसार नियम के अनुसार जब हम भक्ति कर रहे हैं, यमराज बहुत दूर रहता है, अपना सैनिकों को बता देते हैं, तानोपसीद तहरीर गदयाभिगुप्तान नैशाम वयम न च वयहा प्रभवामि दंडे, ये सेवकों तान ना उपसीद, हरिभक्तों के गलती से भी नजदीक मत जाओ, क्यों गदयाभिगुप्तान, भगवान हरि अपना गदा से समृद्ध किया, यदि तुम जाएगा तुम्हारे सिर पर मारेगा। నైషాం వయం నచవయ ప్రభావమిదండే, నైషాం నాయి బ్రహ్మ నా శివ మై యమరాజ్ తథా తుమ్ మేర సేవక్ భి. హరిభక్తంకు దండ దేనిక ప్రభావమిదండే, ఉనికి దేనిక అధికారం నయ్యే. ఇతనా హరిభక్తి కా విశేషత హై సోచ లీజియే. తో యే బతా భక్తం కో గుణ బతా రహే హై, జో అశుభి అశుద్ధ అవస్థా మే హై జో హై వో శుద్ర హై. శుద్ర కభీ శుద్ధ అవస్థా మే రహతా నహీ హై, ఉస్కా మతలబ్ నహీ స్నాన్ కర్నా నహీ కర్నా, మూ ధోనా నహీ ధోనా. ఏక మేరా మిత్ర తా బోల్తా తా, అరే శేర్ కభీ మూ ధోతా హై. ఏక సర్దార్ జీ తా అచ్చా మిత్ర, హఫ్తా మే ఏక దిన్ మూ ధోతా తా జబ్ మై ఫౌజ్ మే తా. అరే మే బోలా, అరే సర్దార్ కమ్ సే కమ్ ధో యార్, కమ్ రోజ్ ఏక దఫా తో ధో, దో దఫా నహీ తో. ఓ హమేషా బోలే శేర్ కభీ మూ ధోయా, అభీ బోలే క్యా బోలే. లోక్ జో హై శుద్ర హై, ఐసా లోగో కే హాత్ సే కభీ నహీ కహనా చాహియే. ఔర్ జబ్ రజస్ వాలా స్త్రీ జబ్ ఆప్ పదార్థ ఖా రహే హై పదార్థ, ఉస్ రజస్ వాలా స్త్రీ దేఖనే సే ఉస్కో ఖానా మనా హై, క్యూంకి మాతాఓ కో అచ్చీ తరహ సే మాలూమ్ హై. ఉస్ సమయ మే మెన్సురల్ పీరియడ్ మే ఉన్కా చేతనా తీవ్ర హో జాతా హై. ఆజకల్ తో కోయి మాన్తే నహీ హై, ఆఫీస్ మే చలో కామ్ కరేంగే కోయి ఫర్క్, అరే కుచ్ పాఖండి లోగ్ బోల్తే నహీ, శాస్త్ర కా హరేక్ కారణ హై హోతా హై. కాన్షియస్నెస్ టైమ్ మే ఉన్కో ఉద్విగ్నత పడ్ జాతా హై, ఓ కై కారణ సే ఉస్కో ఉస్ ఐసా శాస్త్ర బోల్తే ఉన్కో దేఖా హువా అన్న నహీ ఖానా చాహియే. ఔర్ జబ్ పానీ పీనా హై దోనో హాత్ ఐసా జోడ్కర్ నహీ పీనా, క్యూంకి పానీ పీ రహే ఆధా పానీ తో నీచే గిరేగా, హోతా హై కి నహీ, దేఖా హోగా నా, నహీ తో కభీ ప్రాక్టీస్ కర్కే దేఖనా. పానీ పీనా హై తో గాంవ్ వాలే అనాడి హై, పరంతు బోలేగా ఐసా మూ హాత్ రఖేగా ఫిర్ పానీ డాల్తే రహే, ఏక్ బూంద్ భీ పానీ నహీ గిరేగా. జబ్ ఐసా కరేంగే మూ కితనే భీ లగా దో ఇదర్ గిరేగా అప్నా అప్నా గీలా హో జాయేగా. ఇస్లియే బతా రహే కి పిబన్యాంజలినా తపః, పానీ అంజలి దోనో హాత్ జోడ్ కర్ కభీ నహీ పీనా చాహియే. నో చిష్ట స్పృష్ట సలీలా సంధ్యాయాం ముక్త ముక్తమూర్ధజా, ఇస్మే ప్రింటింగ్ గలత హై. ఔర్ హాత్ పాయ దోనే ధోయే బినా బాహర్ సడక్ పర్ నహీ జానా చాహియే. హస్తే బాహర్ జా రహే హై శుద్ధ హోకర్ జానే చాహియే, అచ్చా స్నాన్ కర్కే ముఖ ధో లో, బాహర్ దిఖనే వాలా కో అచ్చా లగ్నే మే చాహియే నా. ఇసే ప్రకార్ ఘర్ కే అందర్ ప్రవేశ భీ కర్తే తో పైర్ ధోయే బినా నహీ ఆనా చాహియే, యే నియమ హై. గాంవ్ వాలే అభీ తక్ కుచ్ గాంవ్ వాలే మాన్తే హై, టీవీ ఆకర్ సబ్ కల్చర్ కో భ్రష్ట కర్తే జా రహా, గాంవ్ మే అభీ భీ మాన్తే హై. బాహర్ సే ఆతే పహలే పానీ దే దేంగే, ఆప్ పహలే ధోకర్ ఆయే నహీ తో కుచ్ తో పానీ ఐసా ఫేక్ దేంగే, పానీ కా షార్టేజ్ హై నా, పహలే తో పానీ బహుత్ హోతా తా, పానీ కమ్ హోతే రహా అభీ. తో పానీ హాత్ పైర్ ధోయే బినా బాహర్ నా చలే. శామ్ కో బాల్ ఖోలే హువే, బాల్ ఖోలే హువే కభీ భీ ఘర్ సే బాహర్ నికల్నా నహీ చాహియే, నిషేధ హై. అబ్ మాతాఓ కో అచ్చా నహీ లగేగా, లేకిన్ యే హై మా బాలోన్ సే పురుష్ ఆకర్షిత్ హో జాతా హై. జహాన్ రుక్మిణి కా బారే మే ఆతే ఉస్మే శ్రీల ప్రభుపాద్ భీ వ్యాఖ్యా మే లిఖతే హై, జో స్త్రీ కా సబ్సే ఆకర్షణ శరీర్ మే హోతా కేశ్ కా, కై హై పరంతు కేశ్ కా ప్రాధాన్యతా రహతా హై. జబ్ ఖులే బాల్ జాయేంగే వర్జిత హై శాస్త్ర కే అనుసార్, శాస్త్ర కే అనుసార్ స్త్రీ కా బాల్ ఏక హీ సమయ ఖుల్తా జబ్ పతి కా దేహాంత హోతా, ఔర్ కోయి అవస్థా మే నహీ. బాహర్ ఘర్ మే స్నాన్ వగైరా కియా ఆంచల్ సే ఢక్ దేనా, జబ్ బాహర్ ఐసీ స్నాన్ కర్కే గీలా హువా జానా పడా, పూరి తరహ సే ఆంచల్ సే ఢక్ కర్ జానా, కిసీ భీ అవస్థా మే బాల్ ఖోలనా నహీ చాహియే. పహలే 30-35 సాల్ పహలే గాంవ్ వాలే జో హై ఆప్ లోగోన్ కో మాలూమ్ హై, జో భీ గాంవ్ సే హై, గాంవ్ మే కోయి స్త్రీ అగర్ కేశ్ ఖోల్ కర్ జా రహా తో సభీ బడా రహా హై, తో విధవా హో చుకీ హై. తో యే ఇస్లియే బతా రహే కి బాల్ ఖోల్ కర్ నా బాహర్ నా చాహియే, స్త్రీ జబ్ భీ జాతా ఆభూషణోన్ సే జానా చాహియే, అలంకార్ హోనా చాహియే. సజ్జిత్ హువే బినా బాహర్ నహీ జానా, జబ్ తక్ వాణీ కా సమయ నా హో, అర్థ హై జబ్ ఆప్ ఘర్ మే ఝగడా కియా, బడా క్రోధ ఆ గయా, అబ్ క్రోధ మే ఆప్ బాహర్ జాఓగే, ఉస్ సంయమ్ రహేగా. అబ్ బాహర్ గయా కోయి బాత్ హో గయా తో ఉన్కో భీ దో తీన్ గాలి సునా దియా, अभी तो आप घर में आप और पति देव का झगड़ा हो रहा था, अभी तो और कई फैमिली टू फैमिली झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम क्रोध में रहते हैं, संयम स्थिति में नहीं रहता, हम क्या बोल रहे हैं हमें कुछ मालूम नहीं। इसलिए कश्यप महर्षि बोल रहे हैं कि उनको आप जब मन समय स्थिति में नहीं है, वाणी को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है, उस समय में बाहर ना चलो और बाहर नहीं जाने, और जब बाहर जाते हैं पूरा शरीर को ढकना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि मिनी स्कर्ट फैशन, ऐसा लगता है कि कपड़ा शॉर्टेज पड़ रहा, बहुत सारे मिल्स है लेकिन ऐसा लगता है कपड़ा उनका शॉर्टेज है, चलो छोटा कपड़ा पहनकर चले। ये वर्जित है शास्त्र के अनुसार। तो इस प्रकार जो है ये कश्यप महर्षि अपना पत्नी को बता रहे हैं, ये सब वैष्णव गुण है। इसका पीछे उनका उद्देश्य क्या है, जब देव दिति उनका पत्नी इस सब नियमों को पालन करेगी, अपना वैष्णव गुण आएगा। वैष्णव गुण में कोई द्रोह चिंतन रहता ही नहीं है, भगवान का भक्ति रहता है। जब भगवान का भक्ति है उनमें, चेतन में भगवान का स्मरण कर रही है, व्रत है भगवान हरि का भक्ति कर रही है, और चेतना में पूरा हमेशा करुणा दया अद्वेष्ट भाव है, जो उनका पुत्र जो होने वाला है देवताओं से कैसे विरोध करेगा। सो सर कश्यप महर्षि का भी उनका चिंता जो इच्छा था वो इंद्र को नहीं माना वो भी पूरा हो रहा, और उसको जो वचन दिया है कि तुम्हारा पुत्र होगा दोनों पूरा हो रहा। इसलिए ये सब नियम बताया हुआ है, ये नियम द्वारा अपना आप ही जब से नियम पाएंगे अपना आप ही वो वैष्णवी भी बनेगी। ऐसा तो शास्त्र में लिखा है, यस्यास्ति भक्तिर भगवत अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। ये गुण जब भगवान श्री राधा रास विहार का भक्ति हम करने लगेंगे, ये गुण स्वतः अपना पाएगा। भक्ति दिखाने के लिए नहीं होता, यह आत्मा का संबंधित है। अब पूरा मनसा वाचा कर्मणा भगवान का समर्पण करते पूरा जप करने लगेंगे भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान नाम जप करते भगवान का सेवा में तत्पर रहते, भक्तों का सांगत्य लेने का तत्पर होते हैं, कब मंदिर में जाओ ऐसे चिंतन रहेगा। ये भगवान का वैष्णव समस्त गुण अपना पाएगा। देवताओं का गुण है, हरिभक्तों के गुण में देवताओं के गुण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हरिभक्तों को देवता का स्थाई दिया जाता है। देवताओं को जो गुण है जो ज्ञान है सभी भक्तों में अपन, हरो भक्त जो हरिभक्ति नहीं करते चाहे कोई कितने भी, अरे बड़ा धार्मिक आदमी है लाभ नहीं है। नारद महर्षि बोलते हैं कि ओ कितने हरो भक्त से कुतो महागुणा, आप कितने भी धर्म पालन कर रहा सच्चाई पर है लेकिन हरि भक्ति नहीं, तो उनके पास महागुण कैसा रहेगा। अपने मन का चिंतन रहेगा, मन का लड्डू खाते रहेगा वो। इसलिए हरि भक्त बनने से समस्त गुण आ जाएगा, उसके लिए यत्न करने की जरूरत नहीं है। परंतु आप जब हमें मालूम है कि गुण वैष्णव का गुण है, जब गलती से मेरे को ऐसा आया इस प्रभु से मैं थोड़ा क्रोध आया द्वेष भाव करने लगे, नहीं 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 मैं द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण बोला है अद्वेष्टा सर्वभूतानां बोला है, मैं दूसरों से क्यों द्वेष करूंगा। इस प्रकार सोचते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कश्यप महर्षि अपना पत्नी को वैष्णवी बना रहे हैं ताकि उनका जो पुत्र होगा वैष्णव बनेगा और विष्णु का इंद्र का द्रोह नहीं करेगा। इंद्र को द्रोह करने का अर्थ है जो भगवान विष्णु द्वारा स्थापित एक व्यवस्था को भंग करना है। बलि महाराज जो है भगवान का भक्त था परंतु इंद्र को हटाया था, और इंद्र को स्थापन कौन करते हैं, भगवान द्वारा अनुमति है। भगवान बोलते तुम मेरा गवर्नर है, और दूसरा आदमी को बोलते नहीं तुम गवर्नर तुम भाग जाओ, तो अधिकारी को तो क्रोध आएगा। इसलिए जो भगवान इस विश्व में जो व्यवस्था चल रहा पालन के लिए लोकपाल के लिए जो भगवान द्वारा नियमित है, उस व्यवस्था को कोई भी तोड़े और भगवान उसको शिक्षा देगा, चाहे वो भक्त भी हो। भक्त वही है जो भगवान का व्यवस्था के अनुसार भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, जैसे दुर्गा माता चलती है ఇచ్చానురూపమపి యస్య చేష్టతే స గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. దుర్గాపూర్ అధిష్టాత్రి దేవతా విశ్వక, పరంతు ఐసా కార్య నేరతో భగవాన్ శ్రీ రాజరాశి వారి కా ఇచ్చాక విరుద్ధ హోతా హై, కభీ నహీ కరేగే. బ్రహ్మసమితమైన సృష్టి స్థితి ప్రళయ సాధన శక్తి రేఖ ఛాయేవ యస్య భువనాన్ని విభర్తి దుర్గా ఇచ్చానురూపమపి యస్య చేష్టతే స గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. మేరా స్వామి మేరా భగవాన్ కా క్యా ఇచ్చా హై, ఉన్కా అనుసార్ చల్నే కే లియే హమేషా ఉన్కా పీచే పీచే ఛాయా రూప్ మే చల్తే రహతీ హై. ఉత్తమ శిష్య వహీ హై, గురు కా ఇచ్చా కా సోచతే హువే బోలే, బోలనే సే పహలే హీ గురు కా క్యా ఇచ్చా హై ఉస్కా అనుసార్ చల్నా హై. ఏక అచ్చా పుత్ర వహీ హై, పితాజీ కా మన మే క్యా హై. భగవాన్ శ్రీ రామ్ కో కభీ దశరథ మహారాజ్ నహీ బోలా తా ఏ రామ్ తుమ్ వనవాస్ జావ్, బోలా తా. లేకిన్ పితా కా ధర్మ సంకట్, పితా కా మన మే క్యా హై సోచతే హువే పాలన క్యా. ప్రథమ శ్రేణి కా పుత్ర హై, ప్రథమ శిష్య. బోలనే కా పశ్చాత్ జో కర్తా సెకండ్ క్లాస్, అరె బోలనే కా బాద్ భీ నహీ కర్తా థర్డ్ క్లాస్ హై. అబ్ దుర్గాదేవి జో నా ఉత్తమ శ్రేణి కా భక్తురా, భక్తునే. వైష్ణవ్ తో నారాయణి మా వైష్ణవి బోల్తే హై. ఇస్ ప్రకార్ జో హై భాగవతం హమ్ ఏ సభీ గుణ సమజతే హువే ఇస్కో భీ హమార జీవన్ మే కైసా హమ అవలంబన్ కర్ సకతే సోచనా హై. భాగవతం సున్నే కర్తా హై ఉస్కో క్యా బోల్తే హై, ఏక శబ్ద హై, మనన్ చింతన్ ఔర్ నిజాధ్యాస్. నిజాధ్యాస్ బోల్తే హై, క్యా బోల్తే హై, కిస్కో యాద్ హై? ఏ చింతన్ హోతా హై, మనన్ భీ కర్నా చింతన్ కర్నా చాహియే, ఉస్కో అప్నే జీవన్ మే అవలంబన్ కర్నా చాహియే, ఇస్కో మే కైసా అప్నే జీవన్ మే లా సక్తా హూం. సో భాగవతం జో భీ సునతే హై ఇస్కా కైసా మేరే జీవన్ కైసా సంబంధ హై, ఉస్కో మే జీవన్ మే కైసా అవతార్ లూ తాకి మే భగవాన్ శ్రీ రాధా రాశి విహార్ కో ప్రసన్న కర్ పాఊ. పూరా భాగవతం కు దేసి క్యా హై, భాగవతం మే క్యా కోయి ద్వేష కర్నే వాలం కే లియే హై? శురు శురు మే బతాయా ధర్మ ప్రోజిత కైతవత్ర పరమో నిర్మచ్చరానాం సతం. ఏ కిస్కే లియే హై? కిసికి అందరూ ఉస్కే లియే హై జో మన మే కిసి ప్రకార్ కో దేశభావ్ నహీ హై. భాగవత్ ధర్మ అర్థ హై శుద్ధ ధర్మ యే. ఏ భాగవత్ ధర్మ జో కి స్వీకార్ కర్తే నిర్మచ్చర్ హోనా అనివార్య హై ఉస్కే లియే. అంత మే భీ బతా దేతే హై శ్రీమద్ భాగవతం పురాణమలం యద్ వైష్ణవానాం ధనం ఎత్ర జ్ఞాన విరాగ భక్త సహితం నిష్కర్మ ఆవిష్కృతం. భాగవతం ఆమె సిఖాతా ఎత్ర జ్ఞాన విరాగ భక్తి, భక్తి సిఖా దేతా, జ్ఞాన సిఖా దేతే హై ఔర్ వైరాగ్యం సిఖా దేతా హై. జా భక్తి కర్నే లగేంగే భక్తి కా పుత్ర జ్ఞాన ఔర్ వైరాగ్య అప్నా ఆప్ హీ ఆయేగా, హమ్ బులానే కా జరూరత్ నహీ హై. జితనా ఆప్ తన్మయ హోగా పూరా అప్నా భగవాన్ కా శరణాగత హోకర్ హమ్ భక్తి కర్నే లగేంగే, జ్ఞాని భీ ఆయేగా, భక్తి భీ ఆయేగా, వైరాగ్య భీ ఆయేగా, క్యూంకి యే తో భక్తి కా పుత్ర హై. వాసుదేవే భగవతి భక్తి యోగ ప్రయోజిత జనయతి ఆసు వైరాగ్యం జ్ఞానంత యత్ అహేతుకిం. శురు మే బతాయా అబ్ ఏక హమారా కర్తవ్య హోనా జా పూరా శుద్ధ భక్తి కర్నే లగే, బస్ శుద్ధ నామ జప్ కరే, శుద్ధ భక్తి కర్నే కే లియే ఆగే బడే, భక్తోం కా ఉస్సే సాంగత్ మే రహే, భక్తోం కే నిర్దేశన్ లేతే రహే, హమ ఉస్సే ఆగే బడతే రహే, నహీ బాకీ సబ్ అప్నా పాయేగా. యే విశేషత హై భక్తి కా. తో సభీ సే ప్రార్థన హై, సభీ తో భక్త హీ హై, కోయి భక్తి మార్గ మే అభీ తక్ నహీ ఆయా. సబ్సే ప్రార్థన హై కి ఇస్కో జీవన్ కా బడా భాగ్య సే హరిభక్త్ మానే కే మిలా హై. హరిభక్తి మే ఆనే సే ఇత్నా భాగ్య హోతా హై కి హరిరపి నిజ లోకం సర్వథాతో విహాయ ప్రవిశతి హృది తేషాం భక్తి సూత్రోపనద్ధః. భక్తి భగవాన్ శ్రీ హరి కే ఇత్నా ప్రియ సఖీ హై, భగవతి లక్ష్మి కు ఛోడ్కర్ అప్నా ప్రియ ప్రియా కే పాస్ జానా చాహతా హై. జిస్నే భక్తి కియా, భక్తి సూత్ర కే అనుసార్ భక్తి మే లగా హువా హై, హరిరపి జ లోకం సర్వథాతో విహాయ అప్నా అప్నా వైకుంఠ మే రహతే హువే భీ హమేషా జిస్ హృదయ మే భక్తి హై ఉస్ హృదయ మే ప్రవేశ కర్కే అప్నా ఘర్ బనానా చాహతా హై. యే భక్తి కా విశేష హై ఔర్ భాగవతం యహీ సిఖాతా హై. హర అధ్యాయ మే భక్తి కైసా కర్నా హమారా సిఖాతే ఆతే హై. యహీ పర్ సమాప్త కర్తే హై. తో ఇస్కా సారాంశ యహీ హై కి కశ్యప్ మహర్షి ఇండైరెక్ట్లీ అప్రత్యక్ష రూప్ సే అప్నా పత్ని కు వైష్ణవి కా గుణ బతాతే హువే వైష్ణవి బనానా చాహతే హై, ताकि उसका वरदान भी झूठा ना हो और जो पुत्र जन्मेगा वो इंद्र का दुश्मन दुष्ट ना वैर ना करे, शत्रु ना बने। बस इसलिए समस्त वैष्णव गुण दे रखा, क्योंकि वैष्णव किसी का द्वेष करेगा नहीं, किसी का दुष्ट होता है नहीं। अजात शत्रु वैष्णव जो है, यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न आलोचना है बोल सकते हैं।
हरे कृष्ण महाराज, बहुत अच्छा लेक्चर दिया महाराज। हरे कृष्ण, मेरा प्रश्न ये है कि हम किसी घर में जाते हैं प्रोग्राम में, तो हमको स्वागत के लिए पीना के ऊपर खड़ा करते हैं, सभी पैर धोते हैं, घर फैमिली से पैर पकड़ के प्रणाम करते हैं, महाराज हमको आशीर्वाद दीजिए बोलते हैं, तो इसे करने से भक्ति नष्ट हो जाता, मना करना चाहिए कि नहीं उनको?
नहीं, एक एक वैदिक विधान है, वो वैदिक विधान को, वैदिक विधान के अंदर जब कोई साधु घर में आते हैं ये अनिवार्य है गृहस्थ के लिए। आजकल तो बोल रहे हैं लेकिन अनिवार्य, महाराष्ट्र में राजस्थान में अभी प्रथा चल रहा, अच्छी बात है, मना नहीं करना चाहिए। अगर हम मना करेंगे वो जो विधान थोड़ा ही बच गया, 90% गया, 10% बच गया, वो भी गायब हो जाएगा। इसलिए माना, हाँ जब वो प्रणाम करेंगे सब कुछ करेंगे, हम उस प्रणाम को प्रपाद को पास ऑन करो, हम अपना पास नहीं रखेंगे, हम देखेंगे, हम गुरु महाराज को देंगे, गुरु महाराज प्रपाद को देंगे, वो सब जाकर चैतन्य महाप्रभु को चले जाए, हम अपना पास रखेंगे नहीं। आशीर्वाद दे रहे कृष्णमति रस्तु, चैतन्य महाप्रभु बोला, भौतिक भौतिक नहीं है, हमारा भक्ति मार्ग है, हमारा जो कुछ है भक्ति प्राप्ति रस्तु, कृष्णमति रस्तु, सर्वदा कृष्णमति रस्तु, बस वही आशीर्वाद। जब भगवान कृष्ण का भक्ति आ जाएगा, सर्वदा चिंतन करेंगे, उसका अशुभ हो ही नहीं सकता जीवन में।
पैर को स्पर्श करते तो
उसको करें, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, वो पैर कर रहे हैं लेकिन आप माध्यम है। जैसे कि अब ये कोई भी इधर, इसको क्या बोलते हैं, इसको व्यास आसन बोलते हैं, जो भी इस आसन पर बैठकर प्रवचन करते हैं, व्यास महर्षि को जितना आदर देना उतना देना है। इसलिए जो भी आएगा पहले प्रणाम करके बैठते हम लोग नहीं, यदि मैं ये सोचूं प्रणाम मेरे को कर रहा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, फिर तो गड़बड़ हो गया। वो व्यास महर्षि मेरे को कृपा करके, भगवान बोला है भाई तू व्यास का प्रतिनिधि हो, अगर मैं थोड़ा सोचे कि मैं बड़ा हूं और भगवान एक नस को ढीला कर दे तो गया काम से। तो हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसको आपको पैर छू रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, हम अपना आगे वालों को पाते हैं, गुरु महाराज प्रपाद चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, हम अपना नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, जब कर रहे हैं भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ताकि मेरे को नहीं है उनका, क्योंकि आप उनका प्रतिनिधि है, इसलिए प्रतिनिधि को रूप में आपको स्वागत करेंगे, आदर सत्कार करेंगे। हम अपना ये सोचे मेरे को ही आदर करें फिर अनर्थ हो जाएगा, हमारा भावना मेरे को ये नहीं होना चाहिए, वो वैदिक धर्म है, वो करना चाहिए उनको, और वही उसी में गृहस्थ के लिए महा कल्याण में है। गरीब से गरीब आदमी भी हो, भागवत चौथा स्कंद में लिखा है, अधुना भी ते धन्या साधवो गृह मेधना यद गृहार्यवर्याण भूमिश्वरावरा। चाहे गरीब से गरीब आदमी भी हो, परंतु जब भक्त हरिभक्त किसी के घर में आते हैं, उनको भाई उनके पास चेयर नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ घास तो मिलेगा, कुछ घास दे दो भाई, भैया यही आसन समझ कर बैठो, ज्यादा पानी नहीं है, कोई थोड़ा पानी ले लो, उसके चरण में छिड़का दो, पिनाए तो दे दो। इसी से बोलते हैं कि वो धन्य है वो पूरा। आगे भी बोलते पूरा उसके पास बहुत पै व्यालालय द्रुमावैत अरिष्ठाग्ल संपदा, उसके पास बहुत पैसा धन संपत्ति है, परंतु उसने एक भाग्य में कभी किसी भक्त घर में बुलाकर पैर धोने का या स्वागत करके उसे भगवान का नाम सुनने का उनका भाग्य में नहीं है, तो उसका लेके व्यालालय द्रुमा, बड़ा अच्छा आम का पेड़ बहुत बड़ा है, स्वादिष्ट है, वहां से महक आ रहा, अब नजदीक जाकर तो देखे है, देखे पूरा नागों सर्पों से दृष्ट है पूरा, उस आम का पेड़ का कोई लाभ है? इसलिए वाला है द्रुमा वैसे अरिष्टाकल संपदा, उसके बाद सब संपदा है परंतु अरिष्ट पूरा व्यक्त रिक्त हो चुका है, क्योंकि लाभ ही नहीं है। जब मर जाएगा सभी करोड़ों रुपये इधर ही रहेगा, उसके साथ एक पैसा नहीं जाएगा। परंतु जो निर्धन है, परंतु जैसे भक्तों को बुलाकर बिठाएगा, भक्त किसी घर में जाएगा तो कीर्तन ही करेगा ना, क्रिकेट के बारे में तो बात नहीं करता ना, किया कोई? और हर भक्ति का बात किया तो घर तो पवित्र हो गया। और जो क्योंकि ये भक्त का सेवा किया, भक्त भगवान का प्रतिनिधि है साक्षात, वो भगवान का सेवा जा कर रहा, भगवान को वाणी सुना, जब शरीर छोड़ दिया, कितने भी निर्धन हो उसका वाणी के बल पर वो भगवत धाम भी जा सकता है। ये प्रभाव है हरिभक्ति का। अच्छा, आप स्वीकार करने के, मना मत करो।
हरे कृष्ण महाराज, ये बोला कि जो घर में जाते कीर्तन करने के लिए, वो सुहोस्ट में जो देगा तो अच्छा होगा, जो डिमांड करते 5,000 देगा, 10,000 देगा, वो लेके आते मंदिर तो सेवा नहीं लगाएगा, वो खुद पॉकेट में डालते। और जिसे को घर में जो नाम बोलते, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा करने के लिए, नाम बोलते भक्तों चला जाते, मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूँ, और भक्त चला जाते घर को जाते, कोई बोलते मेरे पिताजी का तबीयत खराब है, कोई बोलते मेरा माताजी का तबीयत खराब है, इस घर में लगाते। अच्छा, इसको ये पाप इसको लगेगा ना नहीं लगेगा?
बड़ा जटिल समस्या पूछ रहे हो, सबके नाराज हो जाएंगे।
नहीं, ठीक बोलना,
अच्छी बात है। देखिए, कोई भी दान देते हैं किस लिए देते हैं? राधा रास विहार के लिए देते ना। यदि उस दान को मैं ले लिया, राधा रास विहार के चरण में अर्पण कर दिया, आपको कोई उसका फल भोगने का नहीं है। राधा रास विहार तो सब फल और से तो वो परे है, परंतु उस अपना स्वार्थ के लिए प्रयोग किया, जो आदमी दे उसका कर्म फल को मैं भोगना है
ना। इसलिए पार्षद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी जो कोई धर आपको 10,000 1,00,000 आपको दे दिया, आप पॉकेट में डाल दिया, खर्च कर दिया आप खुद में, उसे पार्षद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर
पार्षद करने के लिए वही भगवान का अर्पण करो, पॉकेट में नहीं रखना। आप जो भी आपको दे रहे हैं, उस विश्वास दे रहे हैं कि आप मंदिर का प्रतिनिधि है, भगवान को दे रहा है। अगर रोज छोड़कर मैं अपना पॉकेट भरते जाऊं फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, भरते जाएगा, लेकिन मेरा कर्म का घड़ा भी भरते जाएगा, उनका कर्म पूरा मैं देते रहूंगा। ये बड़ा सावधान रहना है। आप प्रभु जी,
हरे कृष्ण महाराज जी, आपने बताया कि कश्यप जी ने बताया कि उच्चिष्ट नहीं खाना चाहिए, उच्चिष्ट नहीं खाना चाहिए, हम आप बताए तो हम तो चाहते वैष्णव का उच्चिष्ट मिले, और प्रसाद कभी झूठा नहीं होता और प्रसाद कभी खराब नहीं होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा।
वैष्णव के उच्चिष्ट, जो वैष्णव के उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता, ऐसे भी वैष्णव नियम के अनुसार गुरु का उच्चिष्ट वाला कोई नहीं खाना चाहिए, ये नियम है। ये अब किसी को आपको शिक्षा दे रहे हैं, जो हम शिक्षा गुरु बोलते हैं, उसका उच्चिष्ट खाना मना नहीं है, लेकिन आप शब्द प्रयोग करें वैष्णव का। अब ये देखिए, वैष्णव को उच्चिष्ट खाने से हानि नहीं है, क्यों? वो वैष्णव है, उसके पास अपना कुछ नहीं रहता, वैष्णव वैष्णव होना चाहिए बस। वैष्णव वैष्णव हो, उसी को उच्चिष्ट ले, आपको लाभ है। तिलक धारण करने से वैष्णव नहीं होता, वैष्णव का नियम पालन करना चाहिए। कहीं मिलेंगे, तिलक धारण करेंगे, कंठी माला रहेंगे, घर गए गया सब निकाल दिया, बस हो गया, मंदिर माता सब कुछ रहेगा, वो वैष्णव नहीं है। यदि वैष्णव है उसे कोई नहीं, ये सब कर्मकांडियों के लिए। एक जो वैष्णव होते हैं कर्मकांड, जो अभक्त है ऐसा उच्चिष्ट कभी नहीं करना चाहिए, समझ रहे ना?
हरे कृष्णा बोल,
आप बोलिए।
हरे कृष्ण गुरु जी, जिसे कोई काम धंधे वाला है, बिजनेस वाला है, कोई काम धंधे वाला है, उसके लिए पूजा जरूरी है? जिसे कोई काम धंधा जाता है,
काम करने जा रहे
हैं, या बिजनेस कर रहा कोई, उसके लिए पूजा जरूरी है कि भागवत जरूरी है कि माला जाप जरूरी है?
पूजा जरूरी है, माला जरूरी है, भागवतम जरूरी है।
जैसे टाइम न मिला तो क्या जरूरी है?
आप व्यापार कर रहे हैं ना, अब व्यापार करने के पीछे उद्देश्य क्या है आपका?
भगवान की भक्ति करने का, भक्ति करने का,
भक्ति कर रहे हैं। और अर्थ क्या है? आपके व्यापार में जो लक्ष्मी आ रहा है उसको भगवान के सेवा में लगाना, धर्मार्थ काम उच्छा। और जो धन का अर्थ का कमाई है उसमें 50% ही आप अपना परिवार निर्वाह के लिए करना, शास्त्र के अनुसार 50% भगवान के सेवा में लगाना।
हमारा कल वो अर्थ है प्रभु जी कि माला जाप जरूरी है, पूजा जरूरी है, गीता
जरूरी है, माला भी जरूरी है, सांस लेना जरूरी है कि नहीं, व्यापार कर रहे हो सांस लेते हो कि नहीं, बिजनेस कर रहे हैं आप सांस लेते कि नहीं, जिस प्रकार सांस लेना अनिवार्य जरूरी है इस प्रकार हमारे को भगवान नाम भी अनिवार्य है, हमारे के जीवन का एक भाग है वो। पता नहीं किस सांस में मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा मुझे मालूम नहीं है, इसलिए सब चलता रहना चाहिए। भगवान काम ठीक है बोल रहे भाई, तो व्यापार किससे बात कर रहे हैं, मुंह से बात कर रहे हैं ना, मन में भगवान का चिंतन करो। चला प्रपात बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, बोलते हैं यदि आप किसी से बहुत प्रेम हुआ, शायद बुरा नहीं माना, आपका पत्नी है और किसी दूसरों से प्रेम हो गया, आप ऑफिस में है या किसी बात से काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, हाथ पैर काम कर रहे हो लेकिन मन दो है उसके ऊपर घूम रहा, होता है कि नहीं? तो हमारा चिंतन भी है ना, हमारा प्रेम जो है राधा रास बिहारी, मन उनके साथ लगाओ बाकी काम चलता रहेगा, तो सभी जरूरी है। हम नहीं बोलते हैं कि व्यापार जरूरी है भगवान का नाम जरूरी है, भगवान का कृपा से हमारा व्यापार चलेगा। अब भगवान की कृपा नहीं, आप दिन भर मेहनत करो शाम को एक रुपया भी प्रॉफिट नहीं, श्रम है वही केवलम, ठीक है प्रभु? अरे
प्रभु महाराज जी, हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है ये आज के सब्जेक्ट से अलग, मेरा प्रश्न है ये जो हम जैसे सुने हैं कि शास्त्रों में पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है और ब्रह्मा जी से चक्षु से शिव जी निकले हैं, तो ब्रह्मा जी के चक्षु से शिव जी निकले हैं और
चक्षु से
शिव जी निकले हैं ऐसा हमने सुना है शास्त्रों में।
शिव जी
हाँ
भ्रुकुट से,
भ्रुकुट से, तो ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, शिव जी की मृत्यु क्यों नहीं होती?
ब्रह्मा जी जीव में आता है, शिव जी जीव में नहीं आता,
उन्हीं के चक्षु उन्हीं से भ्रुकुटी से
ये बता रहे हैं कि इसमें जो शंभु इस सृष्टि में जितने भी है ब्रह्मा द्वारा क्रिएशन है, ये बताने के लिए ब्रह्मा जी का भ्रुकुटी, भ्रुकुटी का अर्थ क्या है, भ्रुकुटी का अर्थ क्या है? अहंकारात्मकम। आपको जब क्रोध आता किसी के ऊपर आप भ्रुकुट कैसे करते हो, कब ध्यान दिया? ऐसा होता छोटा होता है, जितना क्रोध आएगा इतना छोटा होता जाएगा, कब नहीं तो क्रोध करके आप शीशा में देखते रहो। तो ये भगवान शिव जी जो है अहंकारात्म सूचक है, ब्रह्म संहिता में भी दिया है। तो अहंकार से क्रोध आया, क्रोध का प्रतिरूप है रुद्र है। तो विश्व में जो भी प्राणी है भगवान का है, जैसे एक उदाहरण दिया, जब भगवान जब दक्ष यज्ञ के पश्चात जो है जब देवता जाकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करना चाहते थे, सब डर था, भगवान वीरभद्र तो बड़ा अच्छा स्वागत किया था सभी को, अभी देवता जा रहे नहीं रहे लेकिन जब तक शिव जी प्रसन्न नहीं होंगे तो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, कैसा जाए? ब्रह्मा जी बोलते मैं चलता हूं, देवता बोलते हम पीछे रहेंगे पहले आप जाइए, अगर ठीक ठाक है इशारा करो हम दौड़ कर आएंगे। और ब्रह्मा जी जाते हैं, शिव जी तो विराट बद्रिया कौन सा वटवृक्ष के नीचे अकेला वैराग्य रूप से तपस्या कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मा जी को देखा तुरंत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। उसमें भागवत में लिखा है जिस प्रकार वामन भगवान कश्यप महर्षि को प्रणाम किया, जिस प्रकार श्री राम ने दशरथ महाराज को प्रणाम किया, क्यों? साक्षात भगवान नारायण कहा वामन भगवान कश्यप महर्षि को तपस्या, लेकिन इधर भौतिक जगत में पुत्र है पिता है इसलिए उस व्यवस्था। तो इसी प्रकार जो है इस भौतिक जगत में जो भी सृष्टि है ब्रह्मा जी कारण है, इसलिए अन्यथा शिव जी का स्थान विशेष होता है। देवादिदेव महादेव बोलते हैं, वो तो ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं ये तो महादेव है ना? एक लौकिक व्यवहार के लिए वो शिवजी ब्रह्मा का पुत्र मानते हैं, और शिवजी जो है ना जीव तत्व है ना विष्णु तत्व, उनका विशेष स्थान है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार रूपांतर बोलो, इसमें जहां क्षीरम यथा दधि विकृत विशेष योगात संजायते न तथा पृथकस्थी हेतु यह शंभुताम तथा समुपैति कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामहे। भगवान श्री कृष्ण ही जो सृष्टि का विध्वंस एक कब कारण करना है। भगवान श्री हरि किसी भी अवस्था में क्रोध में नहीं आएगा, रजोगुण में नहीं आएगा, हमेशा निरंतर विशुद्ध सत्वगुण में वसुदेव तत्व में रहते हैं। लेकिन परंतु ये जो सृष्टि का ध्वंस है तमोगुण में करना, आप अपना लड़कों को एक थप्पड़ मारना है, हंसते बोले है इधर आओ मारूंगा, कैसे बेटे करोगे, क्रोध दिखाओगे ना, अब क्रोध आए तो अब तो तमोगुण आ गया। परंतु कृष्ण जो है कभी तमोगुण में नहीं आएगा, इसलिए वो क्रोध का काम करने के लिए भगवान जो है शंभु रूप धारण करते। इसलिए उस व्याख्या में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लिखते हैं कि शिव केशों में के अंतर ना करे, अंतर होते भी शिव जी बड़ा है कृष्ण वो केशो बड़ा है उस भावना में नहीं रहना, हमारे में क्या शक्ति है, वैष्णवानाम यथा शंभु बोलते कि नहीं, हम तो वैष्णव बनने को कोशिश करें ना, शिव जी तो वैष्णव बना हुआ है।
महाराज जी जैसे उनके भ्रकुटी से निकले तो वो जीवित रहते हैं और वो स्वयं मृत हो जाते हैं ब्रह्मा जी, तो इस मेरा प्रश्न ये था,
हम ब्रह्मा का जीव तत्व है
तो उनके भ्रकुटी से जीव तत्व के भ्रकुटी से निकले वो अमर रहते हैं शिव जी,
उनका सदाशिव में मिल जाते हैं,
तो ऐसा क्यों ब्रह्मा जी जीवित क्यों नहीं रहते,
तो भगवान का एक विशेष है, अभी उसको मैं क्या बोलूंगा। यही मैं बताया ना कि ये इसलिए बता रहे कि विश्व में जो भी प्राणी है ब्रह्मा का अधीन है, इस विश्व के अंदर जितने भी विश्व में जो भी क्रिएशन है हरेक चाहे कोई भी हो वो ब्रह्मा का अधीन में होना है इसलिए। परंतु तत्व रूप से मैं इसलिए उदाहरण दिया था, जिस प्रकार वामन भगवान तो कश्यप महर्षि को प्रणाम किया जबकि वो स्वयं नारायण है, कश्यप महर्षि स्वयं प्रणाम, लेकिन तो भौतिक जगत में पिता पुत्र है इसलिए उस व्यवहार को निभा रहे हैं। इसी प्रकार जो भौतिक जगत को निभाने के लिए जो भी जीव है ब्रह्मा का पुत्र है, मानस पुत्र है, औरस पुत्र नहीं है, मानस पुत्र है ये, ब्रह्मा जी का औरस पुत्र कोई नहीं, सब मानस पुत्र है व्यावहारिक रूप से, और ब्रह्मा जी जीव तत्व में आता है, शिव जी जीव तत्व में नहीं आते। समाप्त करें आप प्रभु जी कुछ बोलो उनको दीजिए बहुत देर।
हरे कृष्णा महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि वैष्णव का उच्छिष्ट लेने के पहले उनकी आज्ञा लेना अति आवश्यक है या नहीं।
यदि आप उस वैष्णव को नहीं जानते हैं पूछना, अगर आप जानते हैं तो ले सकते हैं, कोई वैष्णव आपको आज्ञा नहीं देंगे आपको। सेवा के लिए चोरी करना पड़ता है,
लेकिन हाँ लेकिन
कोई वैष्णव बोलेगा नहीं चलो मेरा कपड़ा धो, नहीं बोलेगा, तो चोरी से कपड़ा धोना पड़ेगा,
तो उनका उच्छिष्ट बिना उनके आज्ञा के लेंगे
नहीं,
तो
वो तो आपसे उनका उच्छिष्ट नहीं, भगवान का संत महात्मा उच्छिष्ट उस भाव से लेंगे, उसमें अपराध नहीं होता।
हरे कृष्ण,
यदि वो अपराध मना करने के बाद लेने से फिर मत लो, वो मना कर दिया उस तब नहीं लेना चाहिए। समाप्त करें।
अगर दुर्गा देवी वैष्णवी है, दुर्गा देवी तो वो मांसाहार और मद्यपान वगैरह क्यों ग्रहण करती है?
करती नहीं है, देखिए एक एक हमारा वेद जो है निवृत्त मार्ग का है, प्रवृत्ति मार्ग का नहीं है, वेद का जो भी साहित्य है निवृत्त मार्ग का है। अभी जैसे समझ लो अभी हॉस्टल में सभी बच्चे रहते हैं, हॉस्टल के नहीं मैं बच्चा बीड़ी नहीं पीना चाहिए बोलते हैं ना, वार्डन बोलता है बीड़ी नहीं पीना चाहिए, अलग एक दो लड़कों को देखा चोरी छुपके बाहर जाकर गेट से बाहर कहीं ना कहीं छुपके चुप झाड़ियों में बैठकर चुपचुप चुप फूक लगा रहा है। अभी वार्डन देखता है कई दफा आए देख रहा, अब बोलने से भी हाँ सर बोलेगा सीधा, अभी उसने वार्डन क्या करते बेटे उसको, अभी तो इसको तो आदत है मना करने से सुनता नहीं है, इसलिए बोलेगा अच्छा करो तुम हफ्ते में रविवार को पी लो। अब सोचा भाई रोजाना पीने के जगह हफ्ता में छह दिन तो नहीं पिए, एक दिन पिएगा ना वो एक बीड़ी। अब वो श्रीमान जी जाकर क्या बोल दिया, हे रविवार स्पेशल डे है, संडे स्पेशल डे है, क्यों जो वार्डन खुद बोला कि तुम बीड़ी पी सकता है सब पी लो, इसका मतलब कोई स्पेशल है, अभी तो अकेले पीता अभी सभी पीने लगा। तो हमारा वेद भी निवृत्त मार्ग है। अभी जो सोचा कि ये तो मद्यपान और शराब के बिना ये शूद्र प्रवृत्ति वाला रुकेगा नहीं है, तो व्यास महर्षि कुछ छूट दिया, चलो भाई यज्ञ करो, इस फलाना अमुक यज्ञ में इस बलि दे दो तब खाओ। यज्ञ तो रोजाना तो नहीं करेगा, कभी कभी करेगा, किसके पास पैसा है। और इसलिए बोला कि रोजाना जो करते जा रहा स्लॉटर हाउस में वो कम हो जाएगा, यज्ञ करेगा तब काटेगा तब पाएगा। अभी इन लोग क्या बना दिया, बस उसके एक प्रमाण पत्र बनाकर बस करने लगे। उसको वेद जो है निवृत्ति मार्ग का है, उसको समझने की बात है। एक श्रीमान जी बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, बोलते हैं कलयुग में वेद पढ़ना पाप है। हाँ, दिखा पे आपको दिखाएंगे भी। अभी वो क्या है, पूरा पढ़ा नहीं है, एक पन्ना में है वेद पढ़ना पाप है। अभी पढ़ लिया, जब लिखा है भाई ये वेद पढ़ना पाप है, अब किसके सज्जन का बात भाई बोले भाई ये तो ऐसा नहीं हो सकता। अब उसने पेपर पूरा तात्पर्य पूरा पढ़ा, पेपर पढ़ा, पेपर पलटने के बाद अशुचि अवस्था में पढ़ना नहीं चाहिए। अब श्रीमान जी अशुचि को तो छोड़ दिया, वेद पढ़ना पाप है। वेद अशुचि अवस्था में पढ़ना पाप है। जिस प्रकार जो भी वेद मंत्र है, जो कि ओम, जो भी मंत्र ओम से शुरू होता है वेद मंत्र है, जो भी वेदों में उल्लेखित है वो सब वेद मंत्र है। उसको जब चाहे तब नहीं कर सकता, जब नहीं कर सकते हो। मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं कैसेट लगाकर सुनते हैं, अरे मृत्युंजय तो इसका नाम ही मृत्यु लोक है, मृत्युंजय कैसे होगा। हम जिस लोक में है मृत्यु लोक इसका नाम ही है ना, बोलते कि नहीं। अब मृत्यु से कैसे छुटोगे। और मृत्युंजय मंत्र बड़ा शक्तिशाली है, परंतु उसके तो वेद मंत्र है, नियम है, उस नियम का उल्लंघन करके जब करोगे वही भगवान त्रिशूल से जो रक्षा करा उसी त्रिशूल से मारेगा, फिर उल्टा प्रभाव होगा। कहने का जो वेद मंत्र है नियम को अनुसार करने से उसका उल्टा प्रभाव होता है। तो अशुचि जो ये है, अब जो बोला था ना, तो शास्त्र कभी नहीं बोला, दुर्गा कभी नहीं बोला कि देव दो। दुर्गा का कई रूप, नारायणी रूप में वो नहीं है, दुर्गा काली रूप में। अभी काली रूप में उन लोग अर्पण करते, जो भी नारायणी रूप में नहीं करते, नारायण रूप में करे तो महापाप है वो, जो केवल काली रूप में उनको बलि देना है। इसलिए उसको बोला ना चंडिका, बोला नारायणी नहीं बोला इसे कश्यप महर्षि, चंडिका। चंडी रूप भयानक रूप है, देखा ना, बड़ा जीव बाहर किया हुआ है, गले में मुंडमाला है, दोनों हाथ में क्या है, एक कटोरा है। मधुकैट आपका कहानी पढ़ा होगा ना, समय बहुत हो जाएगा, फिर आधा घंटा और लगेगा। तो उस रूप में निवृत्ति मार्ग है। लेकिन ऐसा जो दुष्ट है उसके बिना नहीं रह सकता है, शराब और मांस के बिना, उनके लिए भाई चलो कभी यज्ञ करके लो, लेकिन अभी क्या है उसको प्रमाण बांधकर रोजाना कर रहे हैं, उसका शास्त्र नहीं। समाप्त करें। श्रीमद्भागवत पुराण की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय।